नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को बताया कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा, जिसमें नव निर्वाचित संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। सत्र के पहले दिन में नव निर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे तथा सदन के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सत्र 3 जुलाई को संपन्न होगा। आज नजरें ओडिशा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भी रहेंगी। ओडिशा से पहले आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब कुछ देर बाद मोहन चरण मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ से पहले उन्होंने नवीन पटनायक से मुलाकात की। इसके अलावा आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में रैली करेंगे। वो एक दिन पहले रायबरेली के दौरे पर थे। नवीन पटनायक के नेतृत्व में लगभग 25 साल तक बीजू जनता दल के शासन के बाद ओडिशा की राजनीति अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। बीजेपी से राज्य के लोगों की उम्मीदों और अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। यहाँ के लोगों ने न केवल पार्टी को पूर्वी भारत में पहली बार सरकार बनाने का मौका दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार को 20 सांसद भी दिए। ये एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी से 4 अधिक है। इस काम के लिए पार्टी ने मोहन चरण मांझी को चुना है, जो बुधवार को भुवनेश्वर में एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। राज्य में एक साथ हुए चुनावों के नतीजों के बाद नए सीएम की घोषणा में एक हफ्ता लग गया, जो संभवतः उस सावधानी पूर्वक विचार विमर्श का संकेत है जो एक ऐसे नेता को चुनने में किया गया होगा जो न केवल लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, बल्कि बीजेपी के बड़े डबल इंजन सिस्टम का एक प्रभावी घटक हो। मांझी इस काम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। वो एक आदिवासी नेता हैं और 4 बार विधायक रह चुके हैं। बीच में 10 साल का ब्रेक भी ले चुके हैं, इससे शायद उन्हें जमीनी स्तर पर अनुभव मिला है। हालांकि वो लोगों के मुद्दों पर मुखर होने के लिए जाने जाते हैं, इसके कारण कई बार उन्हें कथित रूप से अजय बीजेडी शासन में टकराव का सामना करना पड़ा। गुटबाजी वाली राज्य भाजपा इकाई में उनकी स्वीकार्यता ही उनकी खूबी है। बेशक उन्हें सीएम के रूप में उस स्वीकार्यता को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उस नेता की जगह लेनी होगी जिसने उनसे पहले 24 साल तक राज्य का नेतृत्व किया, और उस पीढ़ी को उम्मीदों पर खरा उतरना होगा जो नवीन पटनायक के शासनकाल में ही पैदा हुई और उन्हीं के शासनकाल में वोट देती रही है। उनकी तुलना पूर्व सीएम और राजनेता नवीन पटनायक से की जाएगी, जिनके अभियान से ज़्यादा उनके प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव बढ़ा है। एक ऐसे राज्य के लिए जो कभी अपने समृद्ध इतिहास की तुलना में गरीबी की कहानियों की वजह से ज़्यादा चर्चित था। पिछले 2 दशकों में ओडिशा ने एक लंबा सफ़र तय किया है। अब राज्य अपनी इस आकांक्षा को पूरा करने और हासिल करने की आदत डाल रहा है। बीजेपी के लिए परीक्षा अब शुरू हुई है। वास्तव में पहला कदम सही रहा है। 52 साल की उम्र में सीएम नई ऊर्जा लाने में सक्षम युवा है। अपने सरपंच के दिनों से शुरू होने वाले ज़मीनी अनुभव को देखते हुए उन्हें परिपक्व नेता माना जाने लगा है। वो झारखंड के करीब और खनिज से भरा उत्तरी ओडिशा की सीट केओंझर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पहले कभी कोई शीर्ष नेता नहीं रहा। उनकी यहाँ तक पहुँच उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जो कभी बीजेडी के आने से पहले बीजेपी का गढ़ था। सीएम के रूप में मांझी बीजेपी के आदिवासी समुदाय तक पहुँच के अनुकूल भी हैं। राज्य की आबादी का 20% से अधिक आदिवासी है। ये पार्टी के उस आदिवासी छवि में भी इजाफा करता है जिसमें पहले मयूरभंज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अब पड़ोसी केओंझर से मांझी को शीर्ष पदों पर लाया गया। दोनों ही संथाल समुदाय से हैं और इन पदों पर पहुंचने तक दोनों ही देश में अपेक्षाकृत कम जाने जाते थे। केवी सिंह देव और प्रावती परिदा के 2 उपमुख्यमंत्री के रूप में चुनना भी क्षेत्रीय संतुलन की पटकथा के अनुकूल है। 6 बार विधायक रह चुके सिंह देव के पास मंत्री का अनुभव है। सन 2000 से 2009 के बीच बीजेपी राज्य में बीजेडी की जूनियर पार्टनर थी। बोलनगीर जिले के पटनागढ़ के तत्कालीन राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंह देव के चयन को मोटे तौर पर सरकार में पश्चिमी ओडिशा का प्रतिनिधित्व माना जा रहा है। इसी तरह पुरी जिले के नीमपारा से पहली बार विधायक बनी परिदा को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। राज्य में पार्टी की महिला शाखा का नेतृत्व करने का अनुभव रखने वाली 57 वर्षीय नेता को चुनकर बीजेपी ने 2 काम पूरे किए हैं। 1, तटीय ओडिशा को प्रतिनिधित्व देना और 2, एक महिला नेता को वरिष्ठ पद पर बिठाना। पार्टी शायद अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी देना चाहती थी कि वफादारी रखने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट।